डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 4 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 4 ऐतिहासिक दृष्टिकोण भजन 4 है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम पाठ को देखते हैं और हम इसे निष्पक्ष रूप से व्यवहार करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल में हम एक व्यक्ति के रूप में आपको जवाब दे सकें, आपको सुन सकें और आपको संबोधित कर सकें। हमें अपना काम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करने में मदद करें और हमें पाखंड से बचाएं। क्योंकि हम सभी दूसरों को दिखाने के लिए चेहरा बनाते हैं लेकिन यह अप्रामाणिक हो सकता है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके नाम की महिमा के प्रति आपके समक्ष ईमानदार, प्रामाणिक और पारदर्शी बने। हमें पवित्र धर्म ग्रंथ में हमें दिए गए आपके अच्छे उपहार पर गंभीरता पूर्वक और खुशी के साथ सोचने में मदद करें। हम इसे अपने धन्य उद्धारकर्ता के नाम पर मांगते हैं। तथास्तु। ठीक है, कल हमने पाठ्यक्रम पेश किया था और यह सामान्य तौर पर चर्च में मिलने वाले पाठ्यक्रम से भिन्न है। चर्च में हमें आम तौर पर प्रत्यक्ष धर्मशास्त्र, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक जीवन और अनुप्रयोग मिलता है। मदरसा पाठ्यक्रम में हम उसके पीछे लग जाते हैं ताकि हम ईश्वर के बारे में जो कुछ भी कहें हम उसे प्रामाणिक रूप से कहें ताकि वह पवित्र शास्त्र के अनुसार बिल्कुल सत्य हो। इसलिए पाठ्यक्रम का उद्देश्य भजनों के धर्मशास्त्र या भजनों के आध्यात्मिक जीवन को पढ़ाना नहीं है, हालांकि यह पाठ्यक्रम का मूल है, बल्कि हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम भजनों को कैसे समझते हैं, उन तक कैसे पहुंचते हैं, इसलिए हम उन्हें समझते हैं। हमने कहा कि जब तक आप यह नहीं जानते कि किसी पाठ का अर्थ क्या है, आप नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या अर्थ है और विभिन्न दृष्टिकोण प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम अपने धर्मशास्त्र और अपने आध्यात्मिक जीवन में भजनों की व्याख्या और अनुप्रयोग में प्रामाणिक हो सकें। पाठ्यक्रम में हम भजनों को समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। हमने कल उसका अध्ययन किया। आज हम फॉर्म क्रिटिकल दृष्टिकोण पर गौर करेंगे। बाद में हम अन्य दृष्टिकोणों जैसे धार्मिक दृष्टिकोण, अलंकारिक दृष्टिकोण और संपादकीय दृष्टिकोण पर गौर करेंगे। पाठ को देखने के इन सभी विभिन्न तरीकों से हमें पाठ को समझने में मदद मिली और यह हमें ईश्वर के बारे में और हमारे बारे में क्या सिखा रहा है, क्योंकि यह ईश्वर के सेवकों के रूप में हमारे लिए लिखा गया है। कल हमने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखा और हमें यह दावा करना पड़ा कि डेविड उन भजनों के लेखक हैं जिनका श्रेय उन्हें दिया जाता है। भजनों में से 73 का श्रेय डेविड को दिया जाता है। आम तौर पर शिक्षा जगत में डेविडिक लेखकत्व को अस्वीकार कर दिया जाता है। हमने नोट किया कि उच्च शिक्षा के भीतर बाइबल के स्वयं के दावों पर एक बुनियादी संदेह है जो ऐतिहासिक आलोचना पर आधारित है, जिसमें भगवान के वचन के प्रति एक बुनियादी संदेह शामिल है। मुझे लगता है कि यह झूठ है। मुझे लगता है कि डेटा डेविडिक लेखकत्व का समर्थन करता है। मैंने उसके लिए एक मामला बनाने की कोशिश की और डेविडिक लेखकत्व का बचाव किया। यदि दाऊद लेखक है तो भजन की आंख राजा है। एक बार हम यह समझ गए कि राजा ही बोल रहा है और वही प्रजा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे चर्च मसीह में है वैसे ही इज़राइल राजा में था। राजा वृक्ष था, वे पत्ते थे, क्राइस्ट वृक्ष है, हम पेड़ के पत्ते हैं, हम अविभाज्य हैं। हमने यह देखना शुरू किया कि जब बात राजा की होती है तो भजन खुल जाते हैं। यह एक राजसी भजन पुस्तक है। हमें संपूर्ण भजनों में राजा का उल्लेख मिलता है, न केवल दाऊद द्वारा बल्कि कोरह के पुत्रों द्वारा भी। यह दृष्टिकोण हमें भजनों को उनके वास्तविक प्रकाश में देखने में सक्षम बनाता है, जिसे औसत ईसाई नहीं देख पाता है। क्योंकि हम स्तोत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के इस मौलिक दृष्टिकोण को चरणबद्ध करते हैं, तो यह हमारी सोच को बदल देता है। अचानक हमने भजनों की ईसाई व्याख्या के लिए एक मजबूत नींव रख दी, क्योंकि यीशु ने कहा वे उसके बारे में बात करते हैं। जब हमें एहसास होता है कि वे राजा के बारे में बात करते हैं और वह राजाओं का राजा है, तब अचानक हमें समझ में आने लगता है कि वे कैसे उसके जुनून, उसकी पीड़ाओं और उसके संघर्षों के बारे में बात करते हैं। डेविड ने हमारे द्वारा अनुभव की गई हर भावना को आत्मसात किया है, और यह मसीह की प्रत्याशा है जिसने हमारे सभी कष्टों, हमारी सभी भावनाओं को अपने ऊपर ले लिया है। यहां तक कि क्रूस पर भी उसने महसूस किया कि ईश्वर ने उसे त्याग दिया है, जैसा कि हम संकट के समय महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया है। यह एक सामान्य मानवीय अनुभव है और ईसा मसीह ने इसका अनुभव किया। हमारी ही तरह उस पर भी हर तरह से प्रयास किया गया, और जब हमें प्रार्थना का तत्काल उत्तर नहीं मिलता तो हम अविश्वास की ओर प्रलोभित हो जाते हैं। भगवान कहाँ है? और हम उस बिंदु पर अपने विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं। मसीह को यह भी महसूस हुआ कि उसने हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। उसे हर प्रकार से प्रलोभित किया गया। हम प्रलोभित हुए और उन्होंने आध्यात्मिक रूप से विजय प्राप्त की, और इसलिए वह हमें दिखा रहा है कि हम आध्यात्मिक रूप से कैसे विजयी होते हैं। तो भजन, एक बार जब हम इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम अचानक भजन को समझने की एक और दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। हमें अपने उद्धारकर्ता के बारे में बेहतर समझ है, और भजन हमसे कैसे संबंधित हैं, क्योंकि हम मसीह में उनसे प्रार्थना करते हैं जो हमारे सभी कष्टों और हमारी विजय में हमारे साथ रहे हैं। तब हमारा दृष्टिकोण इस अवधारणा को व्यापक रूप से देखने और फिर इसे लागू करने के लिए कुछ विशिष्ट भजनों तक सीमित करने का रहा है। इसलिए कल हमने भजन की व्यापक शाही व्याख्या स्थापित करने के लिए इसे व्यापक रूप से देखा, और हम राजा की ओर देखते हुए पूरे स्तोत्र के पार गए। मैंने कहा इसका एक प्रमाण यह है कि यह राजा के बारे में है। यह कुछ भजनों को सत्यनिष्ठा देता है जिन्हें हम आम तौर पर समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए मैंने भजन 4 को चुना है। और आज हम वही हैं। हम संकीर्ण हो जाएंगे और एक स्तोत्र को देखेंगे और समझ जाएंगे। हम इस पर गौर करेंगे। यह डेविड का एक भजन है, और हम इसे डेविड के दृष्टिकोण से, राजा के दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से भजन को सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। तो हम पेज पर हैं, यह क्या है? हमारे नोट्स में से 25 व्याख्यान 4। और प्रत्येक मामले में जहां मैं अलग अलग भजनों से निपटता हूं, मेरे पास एक परिचय और कुछ बुनियादी पृष्ठभूमि सामग्री होती है, और फिर हम भजन में ही उतरते हैं। परिचय के रूप में आप पृष्ठ के शीर्ष पर देख सकते हैं, यह भाग एक परिचय कहता है, वह पृष्ठ 25 है। और फिर पृष्ठ 30 पर हम वास्तव में भजन भाग 2 प्रदर्शनी को देखते हैं। फिर मैंने कहा वह व्याख्या लेखक के इरादे के साथ भजन से बाहर ले जा रही है। व्याख्या शिक्षक का हिस्सा है जो अब इसे इस तरह से सामने रखता है कि लोग इसे उम्मीद से समझ सकें। इसलिए मैं व्याख्या की बात कर रहा हूं, हालांकि हम जो कर रहे हैं वह व्याख्या भी है। वे एक दूसरे से अविभाज्य हैं। ठीक है, तो परिचय के तौर पर सबसे पहले मेरे पास एक अनुवाद है जो पृष्ठ 25 पर है। पृष्ठ 26 पर इस मामले में मैंने बस व्याख्या के इतिहास का थोड़ा सा स्वाद दिया है। मुझे लगता है कि अक्सर हमें चर्च के इतिहास के बारे में पता नहीं होता है कि चर्च के पूरे इतिहास में 2000 वर्षों से इस भजन पर मनन किया जाता रहा है। हम उस कैथोलिक चर्च का, उस सार्वभौमिक चर्च का हिस्सा हैं। अमेरिकियों के रूप में और अक्सर अधिक बैप्टिस्टिक परंपरा से आने के कारण हम अपने इतिहास से अनजान हैं। हम समय के किनारे पर रहते हैं और समय की गहराई खो देते हैं, और इसलिए कभी कभी मैं आपको बताऊंगा कि चर्च के पिताओं ने भजनों के बारे में क्या कहा है। मैंने टिप्पणी की कि मुझे अपने अच्छे दोस्त प्रोफेसर ह्यूस्टन, जो एक इतिहासकार हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के व्याख्याता थे, के साथ ईसाई पूजा के रूप में भजन और ईसाई विलाप के रूप में भजन पर टिप्पणी लिखने का अनूठा विशेषाधिकार प्राप्त है। उन्होंने वास्तव में व्याख्या के इस इतिहास के प्रति मेरी आंखें खोल दी हैं। तो इस टिप्पणी में, जो अद्वितीय है, वास्तव में हमारे पास भजनहार की आवाज और चर्च की आवाज है। मेरी जिम्मेदारी भजनहार की आवाज थी और उसकी जिम्मेदारी चर्च की आवाज थी। तो वहां मैं जॉन क्राइसोस्टॉम के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका अर्थ है सुनहरा मुंह, और शायद चर्च के इतिहास में सबसे महान धर्मशास्त्री ऑगस्टीन हिप्पो में कार्थेज का बिशप था। फिर हम इसके बारे में बात करने के बाद बस उन्हें थोड़ा स्पर्श करें, मैं स्तोत्र के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में बात करने जा रहा हूं। भजन की कठिनाई यह है कि भजनकार संकट में है, राजा संकट में है। स्तोत्र की कठिनाई यह है कि संकट क्या है। इसका एक भाग अनुवाद संबंधी मुद्दों से संबंधित है। तो फिर वह कौन सी मुसीबत है जिसमें वह खुद को पाता है? मैं परिचय के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि वह संकट क्या है। तीसरी बात, चौथी बात जो मैं यहां देखने जा रहा हूं, वह यह है कि हम हमेशा फॉर्म को देखते हैं। यह कैसा भजन है? यह इस बात का पूर्वानुमान है कि आज हम बाद में क्या करेंगे, वह है फॉर्म को समझना। फिर भजन की अलंकारिकता के बारे में कुछ, और वह स्वयं एक अलग व्याख्यान है। तो यह उन व्याख्यानों के लिए थोड़ा प्रत्याशित है जो आलोचना और अलंकारिक आलोचना से संबंधित हैं। फिर अंततः हम भजन की व्याख्या पर पहुंचेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर अनुवाद। तो हमने पढ़ा, यह पृष्ठ 25 पर डेविड का एक भजन है। मेरा सुझाव है कि यदि आपके पास पेज अलग से हो, ताकि जब हम प्रदर्शनी में आएं तो आप उसे देख सकें, यह एक अच्छा विचार हो सकता है। हे मेरे धर्मी परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तो मुझे उत्तर दे, मुझे मेरे संकट से छुटकारा दे। मुझ पर दया करो और मेरी प्रार्थना सुनो। कितनी देर? अब यहां एक अनोखा अनुवाद है जिसका मुझे औचित्य सिद्ध करना है। उच्च कुल में जन्मे पुरुष कब तक, लगभग सभी अंग्रेजी संस्करण केवल पुरुष कहते हैं, पुरुष कब तक। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये उच्च कुल में जन्मे हैं। यह नेतृत्व है, यह धन है। अब मैं विद्वान पोपों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों पर भी विश्वास करता हूं जो थोड़ा सा खोदने और बेरियन जैसे धर्म ग्रंथों की जांच करने को तैयार हैं, यह देखने के लिए कि पॉल जो कह रहा था वह सच है या नहीं। मुझे यह बताना आपका दायित्व है कि हम किस हद तक सक्षम हैं। मैं किस आधार पर कह रहा हूं कि ये उच्च कुल में जन्मे लोग हैं। इसलिए मैं उस मामले पर बहस करने की कोशिश करता हूं। यदि आप उस अनुवाद का बचाव करने के लिए पृष्ठ 32 पर जाएं कि मैं उस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचा हूं। मैं विद्वान पोपों पर विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि आपको अपने पत्ते मेज पर रख देने चाहिए। इसलिए मैं एक प्रोटेस्टेंट हूं और हम सभी डेटा को देख सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात हो रही है। मैं वहां बात कर रहा हूं, राजा के खिलाफ यह समझा रहा हूं कि ये लोग अपनी महिमा को शर्म में बदल रहे हैं। सबसे पहले यह ईश्वर के विरुद्ध है। शब्द का अनुवाद उच्च जन में और उनके लिए यह मदरसा स्तर का काम है। मुझे संदेह है कि बहुत से छात्रों को कुछ हिब्रू भाषा आनी चाहिए, शायद नहीं। यह जरूरी नहीं है। हिब्रू शब्द बेन ईश है। आप सभी बेने ब्रिट को जानते हैं, या मुझे लगता है कि आप बेने शब्द को थोड़ा बहुत जानते हैं। इसका मतलब है बेन बेनगुरियन की तरह इत्यादि। इसका मतलब है बेटा। आथ बेन बहुवचन है, तो यह लाभदायक है। और फिर इश तो इश है। हमने कल भजन 1:1 में ईश किया था, धन्य है वह आदमी। लेकिन बेन ईश साधारण ईश से भिन्न है। यह दूसरी अभिव्यक्ति के विपरीत है, जो बेने एडम है। ईश अपने आप में व्यक्ति होगा। मोटे तौर पर कहें तो एडम मानव जाति की तरह है। अब जब ये बेन ईश और बेन एडम होते हैं, तो अन्य सभी अनुवादों में वे उन्हें अलग करते हैं। और मैं प्रदर्शित करूंगा, मैं यहाँ ESV का उपयोग करता हूँ, जिसे कई लोग सबसे शाब्दिक मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि सबसे शाब्दिक अनुवाद ही सबसे अच्छा अनुवाद है। मेरा मानना है कि सबसे अच्छा अनुवाद लोगों की भाषा में है। लेकिन यह अनुवाद का दर्शन है। ध्यान दें कि वे इन शब्दों का अनुवाद कैसे करते हैं। यहाँ यह है, सभी लोग दुनिया के सभी निवासियों पर ध्यान देते हैं। यह भजन 49:2 से है, निम्न और उच्च, अमीर और गरीब दोनों। नीच अच्छा एडम है, ऊंचा ही हित है। वहां वे उस शब्द का अनुवाद करते हैं जो मेरे यहाँ भजन 4 में है, अच्छा, वे इसका उच्च अनुवाद करते हैं। NIV भी यही काम करता है। वे इसका अनुवाद उच्च बनाम निम्न करते हैं। तो आप इसे भजन 49:2 में देख सकते हैं। अब इसका प्रयोग लगभग 3 बार हो चुका है। मैं इसका दूसरा उदाहरण लूंगा। उनमें से यह भजन 62:9 से है, कम संपत्ति वाले लोग बस एक सांस हैं, उच्च संपत्ति वाले एक भ्रम हैं। सबसे निचली अवस्था बेने एडम है, उच्चतम अवस्था बेन ईश है। तो अन्य दोनों समय इसका अनुवाद उच्च या सामान्य और निम्न के विपरीत किया जाता है। तो इसलिए इस शब्द का यही अर्थ है, और यह मेरे भजन में सबसे अधिक अर्थपूर्ण है। मैं उच्च कुल में जन्मे पुरुषों के बारे में बात कर रहा हूँ। समस्या यह है कि दाऊद के उच्च कुल में जन्मे लोग उसकी महिमा को शर्म में बदल रहे हैं। वे न केवल उसकी महिमा को लज्जा में बदल रहे हैं, बल्कि वे परमेश्वर से भी विमुख हो रहे हैं। तुम कब तक भ्रांतियों से प्रेम रखोगे और झूठे देवताओं की खोज में रहोगे? अब हम संकट को समझने लगे हैं। उनका नेतृत्व उन पर से विश्वास खो रहा है, इसलिए वे उससे विमुख हो रहे हैं और उसकी महिमा को लज्जा में बदल रहे हैं। उसी तरह जब हम संकट में होते हैं, जैसे वे संकट में होते हैं, जब हम कहीं और जाते हैं और हमें यीशु पर भरोसा नहीं रहता है, तो हम उनकी महिमा को शर्म में बदल देते हैं। हम ईश्वर से प्रेम करने के बजाय भ्रम से प्रेम कर रहे हैं, जो हमारी सच्ची आशा और हमारी सच्ची सुरक्षा है। अब हमें संकट के बारे में कुछ कुछ समझ में आने लगा है, क्योंकि डेविड अपने ही नेतृत्व में धर्मत्याग को खत्म कर रहे हैं। तो हे राजा दाऊद, तुम कब तक ऊंचे कुल में जन्मे हुए पुरुष मेरी महिमा को लज्जित करते रहोगे? मुझे लगता है कि औसत व्यक्ति को भजनों से बहुत कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वे समझ नहीं पाते हैं। वे कहने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, मेरी महिमा कब बदल गई? वे इसे मेरी महिमा को शर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसे नहीं समझते हैं। लेकिन अचानक जब आपको एहसास होता है कि यह वह राजा है जो गौरवशाली है, तो वे उसकी महिमा को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के राजा के रूप में बदल रहे हैं। वे उससे दूर हो रहे हैं, वे राजा से विमुख हो रहे हैं और वे उसके ईश्वर से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि राजा और ईश्वर अविभाज्य हैं। इसलिए वे भगवान से विमुख हो रहे हैं। और यदि आप ईश्वर से विमुख हो जाते हैं तो आप चले जाएंगे, यह अपरिहार्य है। आप दूसरे भगवान के पास जा रहे हैं, क्योंकि हम नश्वर हैं और आप किसी गुरु की सेवा करने जा रहे हैं। आप सेवा करने जा रहे हैं, कुछ पर भरोसा करें। अधिकांश लोग ईश्वर से विमुख हो जाते हैं और अपने धन या जो कुछ भी हो उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम कितने सीमित हैं, तो इसलिए हम किसी चीज पर भरोसा करते हैं और हम कुछ की सेवा करना शुरू करते हैं। हम सब ऐसा करते हैं। तो आप या तो उस चीज की सेवा कर रहे हैं जो ईश्वर नहीं है, और कई लोग धन की सेवा करते हैं, जैसा कि यीशु ने कहा था, आप ईश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, वे असंगत हैं, वे पूरी तरह से दो अलग चीजें हैं। इसलिए वे परमेश्वर से विमुख हो रहे हैं, क्योंकि वे झूठे देवताओं की खोज कर रहे हैं, और उनकी दुनिया में निस्संदेह झूठा भगवान बाल है, और वह बारिश और तूफान का देवता है, और इसलिए वे उस भगवान की ओर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि यह ऐतिहासिक व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अचानक समझ आता है कि बाल कौन है और उसकी महिमा को शर्म में बदलने और फिर झूठे देवताओं की तलाश करने का क्या मतलब है। लेकिन वहां आपको अनुवाद का महत्व भी दिखता है, क्योंकि अगर यह हाईबॉर्न है तो यह बिल्कुल अलग प्रभाव डालता है। यह उनका नेतृत्व है, ये उनकी कैबिनेट है, ये उनके सलाहकार हैं, और यह देश का नेतृत्व, पैगंबर, पुजारी इत्यादि हैं। वे कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि उनका राजा पर विश्वास और भगवान पर विश्वास खो गया है। इस समय इज़राइल में यह एक वास्तविक संकट है। हम उसी संकट का सामना करते हैं जब यीशु क्रूस पर हैं और कह रहे हैं कि भगवान, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे क्यों त्याग दिया? यह एक संकट है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो वह जो करने जा रहा है, वह इस भजन में उनका विश्वास बहाल करने का प्रयास करेगा। तो यह कहने से शुरू होता है और उसकी सात अनिवार्यताएं हैं। यह जान लो कि मैंने अपने लिए धर्मप्रायण लोगों को अलग कर दिया है। जब मैं उसे पुकारूंगा तो मैं मेरी बात सुनूंगा। थरथराओ और पाप मत करो। जब आप अपने बिस्तर पर हो, उच्चकुलीन नेतृत्व से बात कर रहे हो, तो अपने दिल को टटोलें और चुप रहें। धर्मियों के बलिदान चढ़ाओ और मुझ पर भरोसा रखो। फिर वह लोगों का हवाला देता है। कई लोग कह रहे हैं, और यहां फिर से अनुवाद, यह किसी भी दिशा में जा सकता है। इसका अनुवाद किया जा सकता है, क्या वह हमें अच्छा दिखाएगा जो कुछ संदेह व्यक्त करेगा? लेकिन मुझे लगता है कि इसका अनुवाद किया जाना चाहिए, और मैं इसे साबित नहीं कर सकता। यह एक व्यवहार्य विकल्प है जो मुझे लगता है कि बेहतर है। वह सब हमें अच्छा दिखाएगा। अपने चेहरे की रोशनी हम पर चमकने दो, मैं हूं। कई लोग यही कह रहे हैं। अब राजा कहता है, जब उनका अन्न और नया दाखमधु बहुत हो जाए तो मेरा हृदय बड़े आनंद से भर दे। अब यहां मेरे पास एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इसे क्रूक्स इंटरप्रेटम कहते हैं, एक आलोचनात्मक व्याख्या जो मेरे भजन के संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करती है। क्या इसका अर्थ यह है कि मेरा हृदय उनके अन्न और नए दाखमधु की बहुतायत से अधिक आनंद से भर जाए? या इसका मतलब यह है कि यह ईएसवी है, इससे भी अधिक जब उनका अनाज और नई शराब प्रचुर मात्रा में होती है, या जब उनका अनाज और नई शराब प्रचुर मात्रा में होती है? यह बहुत अलग है। वह अनाज और नई शराब के अलावा किसी और चीज की तलाश में है। वह कुछ ऐसा चाहता है जो उसे अनाज और नए दाखमधु से भी अधिक आनंद से भर दे। या क्या अन्न और नया दाखमधु उसे आनंद से भर देंगे? यह एक बड़ा अंतर है। इसलिए मुझे एनआईवी के साथ उस अनुवाद का बचाव करना होगा। इसलिए मैं फिर से बहस शुरू करूंगा। यह पृष्ठ 35 पर है, जहां हम उनके बीच के अंतर पर चर्चा करते हैं। आप इसे उस पृष्ठ के मध्य में देख सकते हैं जो मैं राजा द्वारा फसल काटने के लिए कर रहा हूं। मैं भरता हूं और मेरा दिल और खुशी का अनुवाद करता हूं, और जब सचमुच के समय से, जब से अधिक नहीं। विद्वानों के साहित्य में गति का अर्थ कहने का एक शालीन तरीका है। यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे असहमत हो सकता हूं। तो हम लैटिन गति कहते हैं। तो मैं यह कैसे तय करूं? वह संयोजन आम तौर पर यह यहां हिब्रू है। मैंने इसे आपको नहीं दिया, लेकिन यह मैं हिब्रू है। सामान्यतः मैं सामान्य से अधिक तुलनात्मक होगा, लेकिन 8 समय के साथ इसके 8 अन्य उदाहरणों में इसका मतलब हमेशा उस समय से होता है जब मैं इसी पर बहस कर रहा हूं। अन्यत्र मेद हमेशा अस्थाई होता है, तुलनात्मक कभी नहीं। मैं तुम्हें कुछ श्लोक देता हूं। सिंचा के बाद अपने आप में आनंद का व्यवस्था विवरण में एक अस्थाई अर्थ है। यदि न्यूनतम तुलनात्मक है तो जो आनंद दिया गया है इत्यादि का कोई कारण नहीं है। मुख्य बात यह है कि अन्यत्र इस संयोजन का अर्थ हमेशा कब होता है। यह सामान्य व्याख्या है। मैं शब्दों के इस संयोजन से कोई अपवाद नहीं जानता। जब आप इससे निपट रहे होते हैं तो हिब्रू में प्रवेश होता है, और इस तरह के पाठ्यक्रम की मूल पृष्ठभूमि से परे जो कुछ हम जानते हैं उससे कहीं अधिक गहरा होता है। तो मैंने इसका अनुवाद किया, मेरा दिल भर गया, और वह अनिवार्यता भरे, यह हिब्रू व्याकरण का एक मुद्दा है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं तुम्हें सच बताऊंगा। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक धर्मशास्त्री बनना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं वह शब्दों के माध्यम से है। मैं पवित्र शास्त्र के रहस्योद्घाटन में विश्वास करता था। इसलिए मुझे एक प्रामाणिक धर्मशास्त्री होने का एहसास हुआ। मुझे यह जानना होगा कि शब्दों का क्या अर्थ है और भाषा का क्या अर्थ है। यही कारण है कि मैंने अंततः ग्रीक और न्यू टेस्टामेंट में डिग्री और हिब्रू और ओल्ड टेस्टामेंट में डिग्री प्राप्त की। वह मेरे लिए मूलभूत था। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि सारा धर्मशास्त्र शब्दों पर आधारित है। यदि आप सटीक धर्मशास्त्र करने जा रहे हैं तो आपको यह जानना होगा कि शब्दों को कैसे समझा जाए। आप उन संयोजनों को समझना सीखते हैं जिनसे शब्द एक साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि तितली का क्या अर्थ है तो मैं कहता हूं आप मक्खन का अध्ययन नहीं करते हैं, आप मक्खी का अध्ययन नहीं करते। आपको पता नहीं होगा कि तितली क्या होती है। आप अनानास का अध्ययन करना चाहते हैं, आप पाइन और सेब का अध्ययन नहीं करते हैं। यह एक संयोजन है। यही बात यहां मेरे साथ भी है। यह एक संयोजन है। इसे सही करने के लिए आपको इसका एक साथ अध्ययन करना होगा। ठीक है, आप सभी फिर से हिब्रू भाषा में आ गए हैं। मुझे आशा है कि आप अभी भी पानी के ऊपर हैं और मैंने आपको अभी तक डुबाया नहीं है, लेकिन हम वही हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे करना है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसके प्रति ईमानदार और प्रामाणिक रहूँ। तो मेरे साथ थोड़ा हल चलाओ। मैं उथली जुताई नहीं करता, मैं एक तरह से गहरा हल चलाता हूँ। कभी कभी मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें थोड़ा काम करना पड़ता है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ। ठीक है। जब उनका अन्न और नया दाखमधु बहुतायत से मिलेगा तो मेरा हृदय अति आनंद से भर जाएगा। मैं लेट जाऊंगा और शांति से सो जाऊंगा। और फिर यहाँ मेरा अनुवाद अच्छा नहीं था। होना यह चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, मुझे सुरक्षित अलग रहने दो। मुझे लगता है कि उसका मतलब उस हिस्से में रहना है जहाँ मैं सुरक्षित हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन यह भजन की कोई महत्वपूर्ण व्याख्या नहीं है। अब हम अनुवाद में ही स्तोत्र को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आप पहले से ही यह देखना शुरू कर रहे हैं कि जब हम भजन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझना शुरू करते हैं तो यह इस भजन पर एक पूरी तरह से अलग झुकाव देता है। मैं तुम्हें बस कुछ चर्च फादर बताऊंगा। यह 347 से 407 पर जॉन क्राइसोस्टोम है और इसे मैंने जिम ह्यूस्टन, प्रोफेसर ह्यूस्टन की सामग्री से चुना है। लेकिन वह पूरे चर्च के इतिहास और चर्च के पिताओं ने जो कुछ भी कहा है उसका पूरा विवरण देता है। और अचानक आपको पता चलता है कि हमारे पास चर्च में महान विरासत है, सार्वभौमिक चर्च के भीतर एक महान विरासत है। उनका कहना है कि हम में ईश्वर के प्रति आत्मीयता और विश्वास दोनों हैं। और वह यहाँ अपनी धार्मिकता पर टिप्पणी कर रहा है। इसलिए आइए हम अध्ययन करें कि परमेश्वर के साथ बातचीत कैसे करें। किसी मध्यस्थ की, किसी वक्तृत्व कौशल की आवश्यकता नहीं है, केवल एक विनम्र, नम्र और भरोसेमंद हृदय की आवश्यकता है। लेकिन यह केवल दुनिया के तरीके और चीजें हैं जो हमें उसकी संभावित देखभाल से अलग रखेंगी। और यहाँ ऑगस्टीन है, मैं कितने जोर से, देखो मुझे ऑगस्टीन के बारे में यही पसंद है। वह भगवान के बारे में बात नहीं करता, वह भगवान से बात करता है। वह प्रार्थना करके धर्मशास्त्र पढ़ाते हैं। हे मेरे परमेश्वर, जब मैंने दाऊद के भजन पढ़े तो मैंने कितनी जोर से तुम्हें पुकारा। विश्वास से भरे गीत भक्ति के विस्फोट और उनमें गर्व की सांस के लिए कोई जगह नहीं थी। इन स्तोत्रों में मैंने कितनी जोर जोर से तुम्हें पुकारना शुरू कर दिया, कैसे मैं तुम्हारे प्रति उनके प्रेम से भर गया और उन्हें पूरी दुनिया में सुनाने के लिए प्रेरित किया। क्या मैं मानव गौरव के खिलाफ एक उपाय के रूप में सक्षम था? यह उसके कबूलनामे से है। और फिर विशेष रूप से भजन 4 को उनके अब तक के जीवन के अनुभव के चरणों की अभिव्यक्ति के रूप में उद्धृत करते हुए यह सब एक आउटलेट मिल गया। प्रोफेसर ह्यूस्टन कहते हैं, ओह, यह ऑगस्टीन को उद्धृत कर रहा है। इन सबको मेरी आंखों और आवाज के माध्यम से एक रास्ता मिल गया। जब तुम्हारी अच्छी आत्मा हमारी ओर मुड़कर कहने लगी, तुम कब तक भारी हृदय वाले मनुष्य प्राणी बने रहोगे? खालीपन से प्यार क्यों और झूठ का पीछा क्यों? मैंने निश्चित रूप से झूठ का पीछा करने की तुलना में खालीपन को अधिक पसंद किया था। और हे प्रभु, तूने पहले से ही अपने पवित्र की महिमा की है, उसे मरे हुओं में से जिलाया है और उसे अपने दाहिने हाथ पर स्थापित किया है। हमारे पास एक महान विरासत है और आप इन चर्च पिताओं की सराहना कर सकते हैं जिन्होंने अपने समय के कठिन समय में चर्च की देखभाल की। तो मुद्दा यह था कि वह ऐतिहासिक संदर्भ क्या है जिस पर मैं पहले ही टिप्पणी कर चुका हूँ। ऐतिहासिक संदर्भ यह है कि उनका नेतृत्व उन पर से विश्वास खो रहा है। राजा और ईश्वर अविभाज्य हैं, जैसे यीशु मसीह और सच्चे और जीवित ईश्वर अविभाज्य हैं। यदि तुम किसी को अस्वीकार करते हो तो जो पुत्र का आदर करता है वह पिता का आदर करता है। यदि आप पिता से प्रेम करते हैं तो आप पुत्र से भी प्रेम करेंगे। वे अविभाज्य हैं। तो संकट क्या है? वे उससे क्यों अलग हो रहे हैं? मैं सुझाव दे रहा हूं कि संकट सबसे पहले सूखा है, वहां है, और मैं उस पर बहस करने की कोशिश करता हूं। बारिश नहीं है, कोई फसल नहीं है, कोई नई शराब नहीं है, न गेहूं है, न उधार। यह सूखा है। मुझे लगता है यही संकट है। ध्यान दें कि वे क्या कहते हैं, उनकी प्रार्थना क्या है। मैं इसे भजन के याचिका अनुभाग से एकत्र करता हूं। कई लोग पूछ रहे हैं कि अरे वो तो हमें अच्छा दिखाएगा, अपने चेहरे की रोशनी हम पर चमकने दो, मैं हूं। जब राजा प्रजा की ओर से बोलता है और उनके पास खाने को भोजन होता है तब मेरा हृदय बड़े आनंद से भर जाता है। इसलिए सवाल यह है कि यह अच्छा क्या है? वे प्रार्थना कर रहे हैं, हे वह जो हमें अच्छा दिखाएगा। वह एक विशेषण है, एक सार्वाचक विशेषण है। यह किसी चीज का प्रतिस्थापन है। वे क्या अच्छाई मांग रहे हैं? अच्छाई का तात्पर्य कहीं और बारिश और फसल से हो सकता है। फिर से मैंने इसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया। भजन 85.12, यह पृष्ठ 80.27 के शीर्ष पर है। यहां वे क्या कहते हैं? सचमुच यहोवा हमें वह देगा जो अच्छा है, और हमारी भूमि अपनी उपज उपजाएगी। अगले घंटे में मैं कविता और समानता के बारे में बात करने जा रहा हूं। अच्छे से अस्पष्टता के ऐसे मामले में आप इसका अर्थ समानांतर से प्राप्त कर सकते हैं जो उत्पन्न होता है। तो भूमि की उपज अच्छी है, मैं इसे लेता हूं। तो प्रभु हमें वह देंगे जो अच्छा है। और अच्छा क्या है? हमारी जमीन अपनी उपज पैदा करेगी, बस प्रत्याशा। आप देखिए, यह तब मददगार होगा जब हम फॉर्म में आ जाएंगे, जो आंशिक रूप से कविता है, यह समझने के लिए कि कविता को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बी वर्सेट दूसरी पंक्ति ए वर्सेट को विस्तृत करती है। तो इसलिए और वे एक साथ चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अंतिम कारण भगवान है, इसका तात्कालिक कारण भूमि है। भलाई का अंतिम कारण ईश्वर है, लेकिन वह इसे भूमि के माध्यम से करता है। इसलिए जब आप भजन और कविता पढ़ना सीखते हैं तो आप इसे बहुत तेज चाकू से काटना शुरू कर देते हैं, और आप प्रत्येक पंक्ति पर उचित रूप से ध्यान देना शुरू कर देते हैं और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। जब हम हिब्रू कविता को समझना शुरू करेंगे तो यह निश्चित रूप से आपके ध्यान और बाइबल अध्ययन को गहरा करेगा। लेकिन समानांतर यह दर्शाता है कि जो कोई भी कविता के साथ काम करता है उसे तुरंत पता चल जाएगा कि यह भूमि की उपज अच्छी है। अच्छा, मुझे एक और लेने दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह यिर्मयाह की ओर से है। उन्होंने आपस में यह नहीं कहा, हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने जो पतझड़ और बसंत ऋतु में वर्षा देता है और हमें कटनी के नियमित सप्ताहों का भरोसा देता है। तुम्हारे अधर्म ने इन्हें दूर रखा है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें भलाई से वंचित कर दिया है। वहां मुझे लगता है कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह बारिश और फसल के बारे में बात कर रहा है। इसलिए मैं इसे इसलिए मानता हूं, जब लोग कह रहे हैं कि हमें अच्छा कौन दिखाएगा, वे बारिश और फसल मांग रहे हैं। यह जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे यह जरूरी नहीं पता होगा, सिवाय उसकी प्रार्थना के जो लोगों का अनुसरण करती है, वे प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई हमें बारिश और फसल दिखाए। और वह कहता है, जब उनका अन्न और नया दाखमधु बहुत हो जाए तो मेरा हृदय बड़े आनंद से भर दो। मुझे लगता है कि मैं यहाँ एक समस्या बताने के लिए ठोस आधार पर हूँ। सूखा है, बारिश की कमी है, यह एक वास्तविक संकट है। जैसा कि हर कोई जानता है कि जब आपके पास बारिश नहीं होती है, खासकर उस अर्थव्यवस्था में, उस कृषि अर्थव्यवस्था में, वे जीने और जीवित रहने के लिए हर साल फसलों पर निर्भर होते हैं। और जब उनका एक वर्ष बिना बारिश के बीत जाता है, तो वे गहरे संकट में पड़ जाते हैं। और देश और राष्ट्र इस वक्त बहुत बड़े संकट में हैं। संकट का पहला भाग सूखा है। तो मैंने उस तर्क पर बहस करने की कोशिश की। तो सबसे पहले, इस स्तोत्र में किसी शत्रु का कोई उल्लेख नहीं है, जो अद्वितीय है। विलाप के 50 स्तोत्र हैं। 47 शत्रु का उल्लेख करो और 3 शत्रु का उल्लेख न करो। कुछ और है, यह 3 में से एक है। वह नहीं है, भूमि पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर रहा है। कोई भी किसी भी दर पर बाहर से दुश्मन को उखाड़ फेंकने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह इसका उल्लेख नहीं करता। मैंने कहा कि अच्छा अन्यत्र रूपक के रूप में होता है। इसका मतलब है कि एक संज्ञा दूसरे के लिए, और आपको इसे बारिश और फसल के लिए भरना होगा। और मैंने वो दिखाने की कोशिश की, तब वह कहता है, अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर जब अन्न और नया दाखमधु बहुतायत से होता है, तब वह मेरे मन को आनंद से भर देता है। और मैंने उस मामले पर बहस की। यह सुलेमान की प्रार्थना संख्या 4 पर फिट बैठता है। सुलेमान, सुलेमान के नामों पर ध्यान दें। जब वह एक मंदिर बनाता है, तो वह 7 संकटों का नाम देता है। जब युद्ध जैसे संकट में लोग मंदिर आते थे, और उनमें से एक अकाल है जब सभी लोग एक साथ आते थे और बारिश और फसलों के लिए प्रार्थना करते थे, तो वह कहते हैं, यह मंदिर के समर्पण पर सुलेमान की प्रार्थना है। इस स्थिति में, जब आकाश बंद हो जाता है और वर्षा नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करते हैं और तेरे नाम को स्वीकार करते हैं, और जब तू उन्हें दुःख देता है, तो वे अपने पापों से फिर जाते हैं। फिर स्वर्ग में सुनो, फिर अपनी सेवा और अपनी प्रजा का पाप क्षमा करो। निःसंदेह उन्हें अच्छा मार्ग सिखा, जिसमें उन्हें चलना चाहिए, और अपने देश में, जिसे तूने अपक्की प्रजा को निज भाग करके दिया है, मेह बरसाना। तो इस भजन में कोई सुझाव नहीं है कि पाप है, लेकिन यह दर्शाता है कि आप सूखे के संकट में मंदिर में आते हैं और बारिश के लिए आते हैं। यह पहला संकट है, लेकिन दूसरा संकट भी है। वह संकट यह है कि वर्षा के लिए राजा उत्तरदायी है। यह मुझे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से मिलता है। इसे जॉन ईटन ने अपने किंगशिप और भजन में विकसित किया है। मैं आपको 2 उद्धरण देता हूं, एक सीरिया में अशरबनीपाल से। यह मध्य पूर्व की आज की स्थिति के बारे में अच्छी चीजों में से एक है। लोग जानते हैं कि इराक कहाँ है, और वे जानने लगे हैं कि ईरान कहाँ है। मेरा मतलब है, वह दुनिया मेरे छात्रों के लिए पूरी तरह से अनजान हुआ करती थी। अब उस दुनिया को हर कोई जानता है। इसलिए, जब मैं इराक के बारे में बात करता हूँ, तो वह उत्तरी भाग है। आप मोसुल के बारे में पढ़ते हैं, वह असीरिया है। जब आप बगदाद के बारे में पढ़ते हैं, तो वह बाबुल और बसरा तक होता है। तो अब किसी भी कीमत पर वे सभी हुआ करते थे, दोनों एक साथ थे, सीरिया का हिस्सा थे। अश्शूर के राजा अशरबनीपाल ने ध्यान दिया कि वह क्या दावा करता है, जब से मैं अपने पिता, मेरे पूर्वज अदद, जो उनकी पौराणिक कथाओं में तूफान देवता थे, के सिंहासन पर बैठा था, उसने अपना प्रभाव खो दिया है। और आर, जो झरनों वगैरह का पानी के नीचे का देवता है, और आर ने अपने फव्वारे खोल दिए हैं। जंगल प्रचुर मात्रा में उग आए हैं, और वह भूमि की प्रचुरता का श्रेय इसलिए देता है क्योंकि देवताओं ने उस पर कृपा की। जब से वह सिंहासन पर बैठा, तूफान के देवता ने उन पर वर्षा की और पानी के नीचे के देवता ने उन्हें पानी दिया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं राजा हूं। यह उसका घमंड है। या फिर यहां फिरौन है। अब फिरौन एक देवता है। यह मैं ही हूं जिसने अनाज पैदा किया, क्योंकि मैं अनाज देवता आमोन का प्रिय था। मेरे वर्षों में कोई भी भूखा नहीं सोया। इसलिए वह दावा करता है कि यह मैं ही हूं जिसने अनाज पैदा किया, क्योंकि मैं अनाज देवता का प्रिय था। अब यह बुतपरस्त धर्म में है। यह इसराइल का राजा सच्चा राजा है। और बारिश नहीं हुई और वह मुसीबत में है। और इसलिए यह आम बात है। हे महानुभावो, तुम कब तक मेरी महिमा को लज्जा में बदलते रहोगे? तुम कब तक भ्रांतियों से प्रेम रखोगे और झूठे देवताओं की खोज में रहोगे? और झूठे देवता बाल हैं, तूफान देवता, जो आकाश में बादलों को घुमाता था और गड़गड़ाहट के समय अपनी आवाज सुनाता था। तो वह तूफान देवता थे। उसे अपने दाहिने हाथ में एक टेढ़ा भाला, जो बिजली होगी, और उसके बाएं हाथ में एक बड़ा क्लब, जो गड़गड़ाहट का प्रतिनिधित्व करता है, के रूप में चित्रित किया गया है। वे अब सच्चे ईश्वर से बाल की ओर मुड़ रहे हैं। इसके बीच में भगवान पर भरोसा करने के बजाय यही उनके लिए विकल्प था। वैसे मैं उस पर वापस आऊंगा। तो मैं जो कह रहा हूं वह दूसरा संकट है। प्राचीन निकट पूर्व में राजा भारतीय धर्मों में एक जादूगर व्यक्ति की तरह था, और वह बारिश के लिए जिम्मेदार था। तो यहां बारिश के लिए जिम्मेदार सच्चा राजा है और बारिश नहीं होती है। यही संकट है। वे इसे उसके राजत्व पर प्रश्नचिन्ह बताते हैं। तीसरा संकट यह है कि उस दुनिया में राजा को प्रार्थना में कुशल माना जाता था। यहां फिरौन है, उसकी महिमा, उसके पिता भगवान आमोन, अनाज भगवान के होठों से आने वाली हर चीज को उसी समय साकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में मिस्र का धर्म नामयह और दावा यह था। तुरंत प्रतिसाद, जैसे ही मैं प्रार्थना करता हूं मुझे उत्तर मिल जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि उनमें पर्याप्त विश्वास था। यीशु ने प्रार्थना की और तुरंत उत्तर नहीं मिला। वह खराब धर्मशास्त्र है। यह बिल्कुल सच नहीं है। पुण्य और उसके पुरस्कार के बीच हमेशा एक अंतर होता है। हमेशा एक गैप रहता है। एक गैप होना चाहिए। मुझे बस उस पर टिप्पणी करनी है। आप देखिए, यदि ईश्वर ने तुरंत पुण्य का प्रतिफल दिया तो यह हमें आध्यात्मिक रूप से नष्ट कर देगा। हम भगवान का उपयोग करेंगे। हम इतने स्वार्थी हैं। वह अलादीन के चिराग का जिन्न होगा। इसी सब की मेरी इच्छा थी। यह मुझे बचाता है, और इसलिए वह इसमें देरी करता है और अंतराल कर देता है। इसलिए हम नैतिकता और सच्चे विश्वास को आनंद के साथ मिलाने से नष्ट नहीं होते हैं। हम ईश्वर का उपयोग अपने आनंद के लिए करेंगे, और यदि हमें नैतिकता तुरंत मिल जाए तो हम उसे आनंद के साथ मिला देंगे। तो वह क्या करता है? वह इसे खाली कर देता है। और हम क्या करें? हम गौरवान्वित हैं, न केवल अपने औचित्य पर, हम अपने कष्टों पर भी गौरवान्वित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कष्ट सद्गुण, धैर्य और आशा पैदा करने वाले हैं, जो शर्मिंदा नहीं होंगे। और इन समयों से गुजरने के अंतराल से हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं और नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते। यीशु हमारे साथ उस दौर से गुजरे। उसने उन चीजों के माध्यम से आज्ञाकारिता सीखी जो उसने सहन की। और हम कभी कभी अनुत्तरित प्रार्थनाओं के संकट के माध्यम से आज्ञाकारिता सीखते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास करता है। लेकिन फिर हमें आश्वासन दिया गया कि हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, और यद्यपि यह भजन प्रार्थना के उत्तर के बिना समाप्त हो जाएगा, हम जानते हैं कि इसका उत्तर दिया गया था। यह पवित्र शास्त्र के सिद्धांत में है, लेकिन यह हमारी उन्नति के लिए है जो हमें ईश्वर के बारे में विश्वास और सिद्धांतों और स्वयं के बारे में सिद्धांतों का जीवन सिखाता है। तो और यहाँ असीरियन राजा है, उनकी प्रार्थना भगवान को अच्छी तरह से प्राप्त होगी। इसलिए जब वे कहते हैं तो वह कहते हैं, इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ समय से चल रहे संकट का एकत्रीकरण हो रहा है। यह शब्दों में निहित है। कितनी देर? तो अनुत्तरित शाही प्रार्थना की एक गंभीर स्थिति है जो जारी नहीं रह सकती। सीएस लुईस ने अपने उपन्यास टिल वी ऑल हैव फेसेस, जो कि उनका आखिरी उपन्यास है, में ग्नोम्स के प्राचीन साम्राज्य के भीतर इसे समझने के लिए अपनी कल्पना में एक महत्वपूर्ण स्थिति का वर्णन किया है। जब बारिश नहीं होती और उसके राज्य पर भुखमरी का खतरा मंडराता है, तो राजा का शासन खतरे में पड़ जाता है। तो वह क्या करता है? यह सर्वोच्च बलिदान का समय है। उनकी पसंदीदा सबसे छोटी बेटी साइके को महायाजक ने देवताओं के क्रोध को शांत करने के लिए बलि चढ़ाने के लिए बुलाया है। यह बुतपरस्त प्रतिक्रिया उस भजनकार की प्रतिक्रिया के विपरीत है, जिसे विनाशकारी सूखे के बावजूद निर्माता मैं हूं पर अपना भरोसा रखने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। वह अपने पहले जन्मे बेटे की बलि नहीं देने जा रहा है। वह बस इसके बीच में भगवान और उसके वचन पर भरोसा करेगा और नाराज भगवान को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। लुईस यही सिखा रहे हैं। यह यीशु का अनुभव है। उसने दूसरों को बचाया। उन्होंने कहा कि वह खुद को नहीं बचा सकते। वह इसराइल का राजा है। उसे क्रूस से उतरने दो और हम उस पर विश्वास करेंगे। वह भगवान पर भरोसा रखता है। यदि वह उससे प्रसन्न हो तो परमेश्वर उसे अब बचाए, क्योंकि उसने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इस प्रकार उन्होंने उसका परीक्षण किया, लेकिन वह इस संकट से गुजरकर मौत के मुंह में चले गए। फिर वह मृत्यु से बाहर आए और उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। यही सुसमाचार है, यही सच्ची चिकित्सा है। जब आप इसे समझते हैं तो यही सच्चा उपचार है। ठीक है, यही भजन का संकट है। अब फॉर्म, मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं कि नीतिवचन लिखने में मुझे 30 साल क्यों लगे। ठीक है, खैर मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे करना है, लेकिन इसे शब्द दर शब्द देखना है और वास्तव में इसमें गहराई से उतरना है। ठीक है, रूप उसका काव्य हम पहले ही देख चुके हैं। हम समानता, संक्षिप्तता और ठोस कल्पना के बारे में बात करेंगे। इस स्तोत्र का स्वरूप विलाप या प्रार्थना है। इस प्रकार के भजनों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक तो ईश्वर का संबोधन है, मेरे धर्मी ईश्वर। इस मामले में एक परिचयात्मक याचिका, एक विलाप। विलाप यह है कि मेरी महिमा को लज्जित करके दूसरे देवताओं की ओर उन्मुख हो रहा हूं। वह धर्मत्यागियों को 7 चेतावनियों में विश्वास कैसे बहाल करता है? फिर लोगों से अनुग्रह और फसल के लिए उनकी याचना आती है। फिर स्तोत्र के अंत में वह वास्तव में संकट में तुरंत सोकर न तो परेशान होता है और न ही चिंता करते हुए भगवान की स्तुति करता है। भजन में अपने विश्वास के कारण वह शांति में है। इस तरह यह समाप्त होता है। जहां तक बयानबाजी का सवाल है, इसे इस बिंदु पर जाने दीजिए। यहां बताया गया है कि भजन कैसे विकसित होता है। इस रचना से संबंधित एक सुपरस्क्रिप्ट है जो इसकी शैली और इसके लेखक है। यह सबसे पहले ईश्वर को संबोधित है। फिर श्लोक दो में उच्च जन्म के लिए और दो से पांच तक, और फिर वह वापस जाता है और फिर से भगवान को संबोधित करता है। लेकिन इस बार उसकी वाचा के नाम मैं हूं से शुरू होता है, लेकिन एलोहिम भगवान को संबोधित करने से शुरू होता है। उनकी परिचयात्मक याचिका है, यह एक डॉट बी एक पर है कि भगवान उनकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, उन पर दयालु होंगे और सुनेंगे और संकट से राहत देंगे। उच्च कुलों को संबोधित करते हुए वह उन्हें डांटते हैं और उन्हें पहली चेतावनी देते हैं। फटकार यह है कि वे राजा और परमेश्वर तथा सच्चे परमेश्वर के प्रति अविश्वासी हो रहे हैं। उनकी उन्हें पहली सलाह है कि अपने राजा को जाने, जान लो कि भगवान ने मुझे अलग कर दिया है। अपने राजा को जानो, संकट में अपने राजा पर विश्वास मत खोना। अपने राजा को जानो, फिर उसके पास छह और चेतावनियां हैं जो जोड़े में एक साथ आती हैं। थरथराओ और पाप मत करो, चुप हो और यह बेहतर होगा, अपने दिलों को टटोलें। धार्मिकता का बलिदान चढ़ाओ और भरोसा रखो कि मैं हूं। फिर तीसरा भाग है याचिका टू आई एम याचिका। यह लोगों द्वारा ईश्वर की कृपा के लिए और राजा द्वारा खुशी और साल भर की फसल के लिए है। तब विश्वास में और स्पष्ट रूप से प्रशंसा के साथ राजा सो जाता है। फिर मैंने कल संगीत निर्देशक के लिए तर्क दिया कि भजन पांच की शुरुआत में भजन चार की पोस्टस्क्रिप्ट है। दूसरे शब्दों में यह प्रार्थना अब चर्च को, भगवान के लोगों को गाने के लिए सौंप दी गई है। तो यह हमारी प्रार्थना बन सकती है। तो संगीत निर्देशक के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोस्टस्क्रिप्ट है। यह सिर्फ राजा नहीं है, बल्कि उसने इसे लोगों को भी दिया है, इसलिए वे सब इसे राजा के साथ गाते हैं और हम सब इसे मसीह के साथ गाते हैं। लेकिन आज हम भौतिक साम्राज्य में नहीं रह रहे हैं, हम एक आध्यात्मिक साम्राज्य में रह रहे हैं और हम अपने आध्यात्मिक शासन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह हमें सूखे में आशा देता है। उस बारे में सोचना, हमें निराश नहीं होना है। ठीक है, आइए भजन को और करीब से देखें। आइए फिर प्रदर्शनी को देखें। सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट राजा द्वारा होती है। लगभग सभी विद्वान इसे अस्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि यह उच्च कुलीन पुरुष हैं, तो यह हर वह व्यक्ति नहीं है जिससे वे दूर जा रहे हैं और उसकी महिमा को शर्म में बदल रहे हैं। दूसरे, उसकी एक विशिष्ट महिमा है। जान लो कि प्रभु ने मुझे विशिष्ट महिमा के साथ अलग किया है। यह हर किसी पर लागू हो सकता है, लेकिन प्रार्थना में उसकी विशेष कृपा होती है। वह लोगों के साथ कॉरपोरेट एकजुटता में हैं। वे कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिखाया जाएगा वह अच्छा है, और फिर वह उनके साथ एकजुटता दिखाते हुए कहता है, मेरा दिल भर दो। इसलिए वह अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वे एक साथ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक कॉरपोरेट एकजुटता है। उनके लेखकत्व पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं है, मुझे कोई कारण नहीं पता। फिर भी इसे सार्वभौमिक रूप से निरूपित किया गया और इसकी मृत्यु हो गई। मैं किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा सका क्योंकि उन्होंने यह तर्क दिया था, यह एक बंद दिमाग है, यह विस्मयकारी है। ठीक है, ईश्वर को संबोधन सबसे पहले परिचयात्मक प्रार्थनाओं के साथ। मुझे यहां बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। जब मैं फोन करता हूं तो मुझे यही जवाब मिलता है। ये वास्तव में तीन अनुरोध हैं। एक है उत्तर, दूसरा है राहत और तीसरा है दयालु बनो। ईश्वर के लिए दो प्रमुख शब्द हैं। मैं आपको बुनियादी शब्दावली देने का प्रयास कर रहा हूं। ईश्वर एलोहिम ईश्वर की बात उसकी उत्कृष्टता में करता है। यही वह चीज है जो ईश्वर को मानवता, उसकी शाश्वत शक्ति और उसके अप्राप्य गुणों से अलग करती है। वह शाश्वत है, वह एक एसिटी है। इसका मतलब है कि वह खुद से है, वह व्युत्पन्न नहीं है, वह किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। भगवान को किसी ने जन्म नहीं दिया, भगवान है। तो वह उत्कृष्ट सर्वशक्तिमान है जिससे बाकी सब कुछ उत्पन्न होता है। वह निर्माता है, यह भगवान है। ईश्वर के लिए दूसरा शब्द यहोवा है, जिसका अर्थ है मैं हूं। यह उसका वाचा का नाम है, यह उनका निजी नाम है। इसी तरह वह अपने लोगों से संबंध रखता है। वह इसराइल का परमेश्वर है और उसका नाम मैं हूं। तो जब मूसा कहता है वह परमेश्वर कौन है जिसकी हम आराधना करते हैं, वह कहता है कि मैं वही हूं जो मैं हूं। तो यहोवा का अर्थ है मैं हूं। मैं इसका अनुवाद इसलिए करता हूं क्योंकि औसत व्यक्ति के लिए यहोवा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूं। वह महान है जो मैं हूं। हम इसे समझते हैं और मैं उस पर वापस आऊंगा। और इसराइल में क्या हुआ? क्या उन्होंने उसका नाम मैं हूं प्रयोग करना बंद कर दिया? ऐसा होता था कि वे यहोवा का नाम पुकारते थे, उन्होंने यहोवा के नाम पर आराधना की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसा होता अगर अचानक यहोवा को पुकारने के बजाय तुम यीशु मसीह को पुकार रहे होते? यहोवा के नाम पर प्रार्थना करने के बजाय तुम यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना कर रहे होते? यह एक अत्यंत आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो जो हुआ वह अंतर्विधान काल में हुआ। यहोवा कहने के बजाय वे हमेशा भगवान कहते थे। वे एक उपाधि का उपयोग करते थे और वे प्रभु के नाम पर प्रार्थना करते थे। अब उसने एक आसान परिवर्तन कर लिया क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए कि जब तुम रोमियो में हो, जो कोई यहोवा का नाम लेगा, योएल में वही वह है जो यहोवा का नाम लेगा। और यह यीशु मसीह के ईश्वरत्व के लिए सबसे मजबूत तर्कों में से एक है। इसलिए कि अब प्रभु यहोवा ही मसीह है। लेकिन अब हम और अधिक पूर्णता से जानते हैं कि ईश्वर एक त्रिमूर्ति है। पुराने नियम में वे यह नहीं जानते थे, लेकिन हम जानते हैं। और अब हम जानते हैं कि पिता पुत्र के माध्यम से जाना जाना चाहता है। वह चाहता है प्रेरित यीशु मसीह के नाम पर प्रचार करें। उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना की। और जब मैं इंजील चर्चों में बहुत सारे उपदेश सुनता हूं, तो वे भगवान के बारे में बात करते हैं, लेकिन वे यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करते हैं। और जब तक हम यीशु मसीह का सम्मान नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर का सम्मान नहीं करते। वह अपने बेटे से प्यार करता है। वह चाहते हैं कि उन्हें उनके बेटे के जरिए जाना जाए। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। अब मुझे लगता है कि प्रोविडेंस में ही हम इसका उपयोग करते हैं। उन्होंने एक नए शीर्षक का उपयोग करना शुरू किया जिसने चर्च को केवल भगवान के नाम पर प्रार्थना करने और भगवान के पुत्र के साथ पहचान करने में सक्षम बनाया। यह एक सुझाव है। जब यह कहता है मेरा धर्मी ईश्वर, ईश्वर के बारे में एक महत्वपूर्ण शब्द यह उसका सक्रिय गुण है स्थिर नहीं। इसका मतलब यह है कि यह ईश्वर को उन चीजों को सही करने के लिए प्रेरित करता है जो गलत हो गई हैं। और धर्मी राजा दुहक उठा रहा है, ये सही नहीं है, यह उलट पुलट है और जो गलत है उसे धर्मी ईश्वर तय करता है। वह इसे ठीक करता है। आज अमेरिका में बहुत कुछ गलत है, लेकिन भगवान इसे ठीक कर सकते हैं और वह चीजों को ठीक कर देता है और वह यह हमारे लिए करता है। यही मेरा भगवान होना चाहिए। यह महान ईश्वर व्यक्तिगत है। यह मेरा भगवान है। और जब वह कहता है मुझ पर अनुग्रह करो, अनुग्रह करो, हदन क्रिया का अर्थ है मेरी ओर देखना, मुझ पर कृपा दृष्टि रखना और मेरी आवश्यकता को पूरा करना। बस मुझ पर एक एहसान करो। यह सड़क पर भिखारी की तरह है। मेरा कोई दावा नहीं है। बस मुझे देखो, मुझ पर एक एहसान करो और मेरी जरूरत पूरी करो। वह कृपा है। यहाँ पृष्ठ 31 पर स्थिति का आकलन एवं विचार करना अभिप्राय है। अब मैं प्रार्थना का महान शब्द अपनाता हूँ। प्रार्थना का क्या अर्थ है? एक शब्द में मैं तर्क दे रहा हूँ कि प्रार्थना का अर्थ है किसी मामले का मूल्यांकन करना, निर्णय लेना और हस्तक्षेप करना। यही प्रार्थना है। हम भगवान से मेरी स्थिति का मूल्यांकन करने, मेरी स्थिति के बारे में निर्णय लेने और हस्तक्षेप करने के लिए कह रहे हैं। वे बुनियादी विचार हैं। प्रकाशन में मेरे आश्चर्यों में से एक मूडी प्रेस की धर्मशास्त्रीय शब्द पुस्तक रही है। उसमें से मुझे थोड़ी रॉयल्टी मिल जाती है। मुझे याद है कि मुझे इससे किसी रॉयल्टी की उम्मीद नहीं थी। यह 1980 में सामने आया और 1984 में मुझे मूडी से एक पत्र मिला जिस पर एक सामान्य मुहर लगी हुई थी। खैर, मैं समझ गया। खैर, इतना सारा साहित्य और प्रकाशक, मैंने वास्तव में इसे खोले बिना ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैंने कहा, ठीक है, यह वास्तव में सही नहीं है। उन्होंने मुझे एक पत्र भेजने के लिए हर संभव प्रयास किया, तो मैं इसे खोल दूंगा। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। मैंने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया है और मुझे इससे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। यह काफी अच्छा करता है। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। इसके बावजूद यह सब ईश्वर की कृपा है। वैसे भी मैंने इसका उल्लेख क्यों किया? वैसे भी यह ओह धार्मिक शब्द पुस्तक है। भगवान ने इसका उपयोग कई में किया है। कई पादरी मुझे लिखते हैं और इसके लिए मुझे धन्यवाद देते हैं। और इसलिए धर्मशास्त्रीय शब्द पुस्तक में मैंने यही किया। हम क्या करते हैं? हम हर शब्द को ऐसे ही पढ़ते हैं। और जिस तरह से यह काम करता है वह यह है कि ठीक है, हमने इसे मूल रूप से यंग के कॉन्कॉर्डेंस पर किया था और मुझे इसे क्षेत्र को पढ़ाना था। मुझे ऐसे लोगों को व्याख्या पढ़ानी थी जो हिब्रू जानते थे, जिनकी कोई वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं थी। ऐसा करना बहुत कठिन है, यह सिखाना कि वास्तव में व्याख्या कैसे की जाए। तो और शब्द अध्ययन करते हुए, आप शब्द अध्ययन कैसे करते हैं? तो मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन लोगों की कैसे मदद कर सकता हूं। और यह बात मेरे दिमाग में आई, हमने इसे यंग्स एनालिटिकल से बनाया, जो ठीक है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह मेरे मन में आया कि हम जो कर सकते हैं वह मजबूत है और किंग जेम्स के पास हर शब्द का एक नंबर है। प्रत्येक शब्द वहां सूचीबद्ध है और हर शब्द की एक संख्या होती है। वह संख्या आपको शब्द के अनुरूपता पर वापस ले जाएगी और वह आपको प्रत्येक शब्द की संक्षिप्त परिभाषा देगा। तो मुझे एहसास हुआ कि हमें जो करना चाहिए वह यह है कि हमारी धर्मशास्त्रीय शब्द पुस्तक में एक संख्या होनी चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस से मेल खाती हो। इसलिए लोगों को बस इतना करना है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस में संख्या ढूंढें, इसे हमारी संख्याओं के साथ मिलाएं और वे पूर्ण अध्ययन के साथ वह शब्द प्राप्त कर सकते हैं जो उन्हें नहीं मिल सका। खैर, यह बहुत आसान था। यह उन कुछ चीजों में से एक थी जो मैंने कभी व्यावहारिक रूप से की। यह इतना सरल था कि मूरी ने जो किया उसका एक खंड वे पहले ही प्रकाशित कर चुके थे। उन्होंने इसे खत्म कर दिया और पूरी चीज को फिर से नया बना दिया। तो कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। बस मिलान करें, एक किंग जेम्स प्राप्त करें, एक कॉनकॉर्डेंस प्राप्त करें, संख्याएं प्राप्त करें और उसका मिलान करें, और आपको इसमें इस तरह का शब्द अध्ययन मिलेगा। और फिर वह संकट से बचने के लिए प्रार्थना करता है और उसे घेर लिया जाता है। और जब वह उद्धार करने के लिए कहता है तो उसका मतलब इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक व्यापक जगह बनाना होता है। और उच्च कुल में जन्मे धर्मत्यागियों के लिए कि यहां हम पर पहला आरोप है। यह पृष्ठ 32 पर है। मैंने पहले ही कहा था कि 7 चेतावनियां थीं। तो उनके लिए, उच्च कुल में जन्मे धर्मत्यागियों के लिए, यह श्लोक 2-5 में है। मैंने इसे एक आरोप में विभाजित किया, कब तक? और फिर पहली चेतावनी यह है कि आरोप यह है कि वे बेकार देवताओं बनाम शक्तिशाली राजा में बदल गए हैं, और इसलिए मुझ पर आरोप है। और फिर मेरे पास कई हैं, ठीक है, पहली सलाह है अपने राजा को जाने, ठीक है। अगले 3 श्लोक 4 और 5 में जोड़े में आते हैं। यह भी है, इसलिए मैं इसे आरोप और पहली चेतावनी में डालने जा रहा हूं। वह पृष्ठ 32 परे है। और फिर पृष्ठ 33 पर भी आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए चेतावनियों के 3 जोड़े हैं। और फिर अंत में हमारे पास याचिका छंद 6 और 7 हैं। और पृष्ठ 33 पर हमें विश्वास है। तो यह प्रदर्शनी की रूपरेखा है। मुझे फिर से उससे गुजरने दो। मैंने इसे आप पर थोप दिया है। श्लोक 2-5 में वह धर्मत्यागियों को संबोधित कर रहा है। पहली बात है आरोप और पहली चेतावनी। आरोप यह है कि वे बेकार मूर्तियों और बनाम शक्तिशाली राजा की ओर रुख कर रहे हैं। तो आपको उस आरोप के तहत 1 मिलता है। और पृष्ठ 33 पर आपकी पहली सलाह है कि अपने राजा को जाने। फिर हमारे पास चेतावनी के 3 भाग हैं। खैर, वैसे भी तो नंबर 1 धर्मत्यागियों का पताए हैं आरोप, बी चेतावनी के 3 भाग हैं। फिर वह याचिकाओं की ओर रुख करेगा, ठीक है। चलिए पृष्ठ 32 पर, धर्मत्याग का आरोप यह है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध और इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध हो गए हैं। मैंने ये शर्तें इसलिए ली हैं ताकि आप देख सकें कि वे क्या हैं। पृष्ठ के निचले भाग में मैं कहता हूं किसी आरोप का तात्पर्य कितना लंबा है। यह एक ऐसा गतिरोध है जो गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। यह जारी नहीं रह सकता। मैं महिमा और लज्जा शब्दों की चर्चा करता हूं। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर समय बर्बाद किए बिना इसे वहीं खड़ा रहने दूंगा। वह न केवल उन पर उसके साथ अपने रिश्ते में कायरतापूर्ण और बेदाग होने का आरोप लगाता है, बल्कि वे भगवान के खिलाफ भी हो गए हैं। यह पृष्ठ 33 पर है। आप कब तक भ्रम से प्यार करते रहेंगे? प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्ति की धारणा की प्रबल इच्छा है जो उन्हें उस चीज के पीछे भागने, तलाश करने और उसके प्रति वफादार रहने के लिए प्रेरित करती है जिससे प्यार किया जाता है। तो मैं परिभाषित करता हूं कि प्यार क्या है। उदाहरण के लिए, आप लोगों के पीछे भागते हैं, सेक्स के पीछे भागते हैं, वे प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं। मेरा मतलब है, आज हम में से अधिकांश के लिए मूल रूप से 3 देवता हैं। पैसा, सेक्स अपील और गर्व। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप मेरे जैसे हैं, तो आपके पास पैसा नहीं है, यह समस्या नहीं है। जाहिर तौर पर मुझ में कोई सेक्स अपील नहीं है। मेरा खतरा यह है कि मैं प्रसिद्धि और गौरव चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यह एक अभिनेता या शिक्षक या उपदेशक का खतरा है। यह लोगों की प्रशंसा चाह रहा है, जो एक भ्रमपूर्ण चंचल प्रशंसा है। प्रशंसा के योग्य केवल एक ही है, वह स्वयं परमेश्वर है। कोई प्रलोभन या निरंतर प्रार्थना नहीं, लेकिन व्यासपीठ में बहुत कुछ है। हाँ, ठीक है। अब चेतावनी, उनके आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए पहली बात प्रार्थना में राजा की शक्ति को जानना है। वह कहते हैं, उसे जानो जो वस्तुगत तथ्य है। अलग करने का मतलब है कि वह उल्लेखनीय रूप से प्रतिष्ठित है। चेसिड उसका वफादार व्यक्ति का अर्थ है, अपने लिए एक वाचा भागीदार कि यह राजा उसका है। ईश्वर इस राजा से प्रेम करता है और राजा अपने ईश्वर से प्रेम करता है। इसलिए वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मुझे किताब द शेक पसंद नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छी किताब है। मुझे लगता है कि यह कई मायनों में बहुत खराब धर्मशास्त्र है। लेकिन ऐसा होता है, पुस्तक की ताकत यह है कि यह हमें कुछ विचार देती है कि ट्रिनिटी एक दूसरे से कैसे संबंधित हो सकते हैं। यह किताब की ताकत है कि पिता कैसे बताते हैं। मुझे ईश्वर की दोबारा छवि बनाना पसंद नहीं है। मेरी समझ से यह लगभग ईशनिंदा है। आप भगवान की दोबारा छवि नहीं बनाते। ईश्वर को जानने का एकमात्र तरीका कल्पना, उसकी आत्मा के माध्यम से है। इसलिए जब आप भगवान को एक महिला के रूप में पुनः स्थापित करना शुरू करते हैं, तो आपने एक बुनियादी बदलाव किया है। वह माता के रूप में नहीं, पिता के रूप में जाने जाते हैं। जब आप वह परिवर्तन करते हैं, तो वह कल्पना में एक मूलभूत परिवर्तन होता है। मुझे काले होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वह लाल, पीला, काला या सफेद नहीं है। वह सभी लोगों का भगवान है। इसलिए मुझे ईश्वर की दोबारा छवि बनाना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि यह विधर्म है। मुझे लगता है कि यह कहना एक दुस्साहसिक गर्व की बात है कि चर्च ने 2000 वर्षों से गलतियां की हैं। मेरी झोपड़ी में आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं वास्तव में कैसा हूं। ऐसा करने का अधिकार किसे है? मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान कैसा है। यह गर्व की बात है। मैं बाइबल जो कहती है उसके अनुसार चलता हूं। मैं चर्च के पिताओं की बात सुनता हूं। मैं यह नहीं कहता कि वे सभी गलत हैं। मुझे यह सही समझ आया। मुझे समझ नहीं आता कि यहोशापात भी इस पुस्तक में कैसे शामिल हो गया। क्या आप मेरी समस्याएं देखते हैं? तो अपने राजा को जानो। तेरा हूं इसराइल का वाचा पालन करने वाला परमेश्वर है। जब मैं फोन करूंगा तो वह सुन लेगा। उनकी प्रार्थना में शक्ति है और भगवान ने अंततः उनकी बात सुनी। सवाल यह उठता है कि दाऊद को कैसे पता चला कि वह राजा है? उसे यह आश्वासन किस बात ने दिया? वह निश्चित था कि वह राजा है। उसे वैसा ही माना जा सकता था। हो सकता है कि उसमें किसी तरह का मनोवैज्ञानिक कॉम्प्लेक्स या कुछ और हो। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा था, तुम राजा हो। और हर कोई जानता था कि शमूएल भविष्यद्वक्ता था और भविष्यवक्ता ने उसका अभिषेक किया था। उनके पास पैगंबर का प्रमाणीकरण था। तब परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी। आत्मा का प्रमाणीकरण था। फिर वह बाहर गया और उसने गोलियत से युद्ध किया और उसने परमेश्वर के कार्य किए। हम कैसे जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? खैर, यह समान है। जॉन 5 में वह अपने लिए चार साक्ष्य देता है। एक है जॉन द बैप्टिस्ट, एक स्वर्ग से भगवान की आवाज है, तीसरा है उनका कान, और चौथा पवित्र शास्त्र की गवाही है। इसलिए वह कहता है, मैं तुम्हें जॉन बैप्टिस्ट देता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी आवश्यकता है, बल्कि तुम्हारे लिए। यीशु के मामले में क्या हुआ कि अंतर्विधान काल में वे जानते थे कि कोई पैगंबर नहीं था। मैकाबीज अध्याय 4 अध्याय 9 की पुस्तक में वे कहते हैं, वहां था और जब इसराइल में भविष्यवाणी बंद हो गई तो उन्हें पता चला कि उनके बीच में कोई पैगंबर नहीं था। तो वे कहते हैं, जब इसराइल में भविष्यवाणी बंद हो गई। लेकिन जब जॉन द बैप्टिस्ट घटनास्थल पर प्रकट हुआ तो वे सभी जानते थे कि भगवान की आवाज फिर से भूमि पर थी, और सारा इसराइल और सारा यहूदा उसकी सुनने को निकला। और इसीलिए यीशु ने कहा, तूने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात क्यों नहीं सुनी? हर कोई जानता था कि वह ईश्वर का पैगंबर था। और उसने कहा, यूहन्ना ने कहा, यीशु परमेश्वर का मेमना है, मैं इस लायक नहीं हूं कि उसके सामने अपनी सैंडल खोल सकूं। तो आपके पास जॉन द बैप्टिस्ट की कविता थी, और फिर आपके पास शमूएल की आवाज थी, परमेश्वर की आत्मा सदोम में थी, यह करिश्मा से भरपूर था। वे जानते थे कि वह अलग था, और फिर वह बाहर गया और गोलियत से लड़ा और परमेश्वर के कार्य किए। यीशु में आपके पास जॉन द बैप्टिस्ट की आवाज है। उसके बपतिस्मा के समय आकाश खुला होता है और ईश्वर की आत्मा उस पर कबूतर के रूप में उतरती है, उसके अभिषिक्त कंधों पर निष्पक्ष और सौम्य उसे अलग करती है, उसे एक जंगल में ले जाती है जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं कि वह कहाँ है। 40 दिन से भूखा हूँ, आप इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन यह उसकी पीड़ा की तैयारी का हिस्सा है। और उसने परमेश्वर के काम किए, जैसा उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा। जब वह उससे पूछने लगा तो उसने कहा, लौटकर यूहन्ना से कह कि बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यशायाह ने जो कहा था मैं उसे पूरा कर रहा हूं। इसलिए उसने परमेश्वर का कार्य किया और उसे प्रमाणित किया, और निस्संदेह उनका सबसे बड़ा काम मृत्यु पर विजय पाना था। और हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर की संतान हैं? क्या यह वैसा ही नहीं है? हमारे पास परमेश्वर का वचन है। उन्होंने कहा, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्होंने उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। और हम उस शब्द पर विश्वास करते हैं और हमें परमेश्वर की आत्मा प्राप्त हुई है। हम मसीह यीशु में नई रचना बन जाते हैं। हम अलग तरह से चलते हैं, हम अलग तरह से रहते हैं, हम अलग ढंग से सोचते हैं। मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि हम बाकी दुनिया की तरह उसी ढर्रे पर नहीं चल रहे हैं, और इसलिए हम अपने ऊपर परमेश्वर की आत्मा के साथ अलग तरह से रहते हैं, और हम उससे पुष्टि करते हैं कि हम कौन हैं। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह 17 संख्या 4 ऐतिहासिक दृष्टिकोण भजन 4 है।